आपको स्वागत करते हैं इस यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का के महाजवान महिलाओं की सभा में इस शाम को टेंपल स्क्वायर पर। हम यहां सम्मेलन केंद्र में जो सॉल्ट लेक शहर यूटा में है में इकट्ठे हुए हैं और खुश होते हैं यह जानकर कि इसी तरह की जवान महिलाएं और उनकी माताएं और नेताएं भी विश्वास भर की कई स्थानों पर इकट्ठे हुए हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो समिलाय के नेतृत्व करते हैं ने कहा है कि मैं संचालन करूं। मेरा नाम बहन इलेन एस टेल्टन है, जवाने मिलान की महाध्यक्ष। हम आभारी हुए हैं हमारे प्रिय प्रधान थॉमस एस मॉन्सन और उनके सलाहकारों प्रधान हेनरी बी आयरिंग और प्रधान डिएटर एफ उच्चर से जो आज रात हमारे साथ है। हम उसी तरह एल्डर रॉबर्ट टी हेल्स और एल्डर नील एल एंडरसन जो 12 देवदूतों के प्रधान हैं और बिशप गैरी ई स्टीवेंसन जो बिशप्रक की अध्यक्षी हैं को स्वागत करते हैं। हम इन भाइयों को उनके सहयोग के लिए आधार करते हैं और उनके महत्व के लिए धन्यवाद देते हैं। मंच पर मेरे सलाहकार भी बैठे हुए हैं, बहन मैरी एन कुक और बहन एन एम डिप्स। मैं इन विशेष महिलाओं को प्यार करती हूं और आभारी हूं कि उनके साथ मैं सेवा की इस अवसर के लिए। हम सहायक संस्था और प्राथमिक महाअध्यक्षों का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ मंच पर है। हम प्यार और आभार के साथ उन आदर्श महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने जहान महिलाओं के जनरल बोर्ड में सेवा प्रदान करते हैं। वे सच्चे शुद्ध महिलाएं हैं जिन्होंने जवान महिलाओं के लिए दुनिया भर में विश्वास होकर सेवा को प्रदान किए हैं। हम और एक खास मेहमान की पहचान करना चाहेंगे, बहन फ्लोरेंस स्मिथ जेकबसन, बीते दिनों की जवान महिलाओं के महाअध्यक्ष जो आज शाम हमारे साथ हैं। बहन जेकबसन आने वाले महासम्मेलन के सप्ताह अंत अपना 100th जन्मदिन मनाएंगी। वो महाअध्यक्ष थी जब मैं एक जवान महिला थी। कई अच्छा कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं को उसने शुरू किया था जो आज भी हमें आशीष दे रहे हैं। बहन जेकबसन, हम आपका सम्मान करते और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सुंदर और मजबूत उद्यान के लिए परमेश्वर की एक धार्मिक पुत्री बन गए। हम आप में से हर एक का स्वागत करते हैं जो सभी यहाँ हैं और जो दूरदर्शन सैटेलाइट इंटरनेट और जो आने सदोक से बाहर लेंगे। हम इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि भविष्यताओं दूताओं और प्रकरात करने वालों की निर्देशन में सीख सके। इस सभा का संगीत एक जवान महिलाओं की गायक मंडली जो हाईलैंड यूटा और हाईलैंड दक्षिण स्टेक से है।
Father,
ये हमारे परमेश्वर, हम आपके पुत्रियों इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर में. हम आपके आभारी हैं हमारे यंग वुमन प्रोग्राम के लिए कि हमें स्टैंडर्ड दिए हैं कि हम सब कार्य कर सके. हम आभारी हैं हमारे लीडर्स के लिए और हमारे भविष्यवक्ता के लिए. हम आभारी हैं कि हमें इस मौका मिला कि हम एक दूसरे से सुसमाचार बांट सके. हमें आशीष दीजिए कि हम जो कुछ सलाह आज सीखे कि हम उसे कुछ सीख सके. दुनिया भर के यंग वुमन को आशीष दे कि उनके पास शक्ति मिले कि जी उन अपने जीवन के सही राह पे चल सके. हमें आशीष दीजिए कि हम होली प्लेसेस में खड़े रहे यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
गायक मंडली हमारे लिए इन दैट होली प्लेस जो सैली डी फोर ने लिखा है गाएंगी, जो न्यू एरा में छप चुकी है पहले. इस खास नंबर के बाद बहन आन डेब को सुनकर प्रसन्न होंगे, जो जवान महिलाओं के महाध्यक्ष में दूसरी सलाहकार है. गायक मंडली फिर मोर होलीनेस गिव मी ब्रियाना गिब्सन के साथ सेलो पर गाएंगी, जो हाईलैंड 21st वार्ड की एक लॉरल है. बहन मैरी एन कुक, जो जवानों की महिलाओं की महाअध्यक्ष की प्रथम सलाहकार है, इसके बाद हमें बातें करेंगी. बहन कुक के बाद हम एक वीडियो परासन देखेंगे जो तुम सब पर लागू है और तुम्हारे जवान में वादों को बनाने और निभाने की मार्ग पर लागू है.
our 2013
म्यूचुअल विषय डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स के 87 भाग में मिलता है। ये आदेश तीन अलग अलग भाग में पाया जाता है। स्पष्टता से ये आदेश महत्वपूर्ण है। ये बतलाता है कैसे हम मुसीबत के समय में सुरक्षा, ताकत और शांति पा सकते हैं। प्रेरित आदेश है, पवित्र स्थान पे खड़े रहो और हटना नहीं। इस विषय पर जब मैंने सोचा, मुझे खुद से पूछना पड़ा, कौन से पवित्र स्थान की स्वर्ग के पिता बातें कर रहे हैं? प्रधान एज़रा टबेंसन ने सलाह दिया, पवित्र स्थानों में हमारे मंदिर, हमारे चैपल, हमारे घर और जायोन के स्टेक शामिल है, जो एक बचाव और एक सुरक्षा के लिए है। इनके अतिरिक्त मैं विश्वास करती हूँ कि हम कई और पवित्र स्थानों को ढूंढ सकते हैं। हम शायद सबसे सोचेंगे ये शब्द स्थान का मतलब होगा एक आसपास का पवित्र वातावरण या एक इलाका। हालांकि एक स्थान एक अलग स्थिति पर या मस्तोती हो सकता है। इसका मतलब है पवित्र स्थान में समय से कुछ पल भी हो सकते हैं, और वो पल जब पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है, वो पल जब हम स्वर्ग के पिता के प्रेम को महसूस करते हैं, या वो पल जब हम अपने प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त करते हैं। इस अरसे आगे मैं विश्वास करती हूँ किसी भी समय तब जब तुम्हारे पास हिम्मत हो सच्चाई के लिए लड़ने का, खासकर उन स्थितियों में जब कोई और ऐसा करने को तैयार नहीं होता, तब तुम एक पवित्र स्थान उत्पन्न कर सकते हो। जोसेफ स्मिथ के छोटे मगर विशाल जीवन में वो सच में पवित्र स्थान में खड़े रहे और हटे नहीं। युवावस्था में वो अपने समाज के धार्मिक उथल पुथल को लेकर परेशान थे और जानना चाहता था कि कौन सा गिरजाघर सच्चा है। उसके घर के पास का जंगल उसके लिए एक पवित्र स्थान बन गया जब वो पेड़ों के बीच घुटनों पर हुआ और अपने पहला जुबानी प्रार्थना कहा। उसका प्रार्थना का जवाब मिला था और आज अंतिम दिन संतों इन जंगलों को सेक्रेड ग्रोव पवित्र जंगल कहते हैं। दुनिया भर की जवान महिलाओं बाहर पवित्र स्थान में खड़ी होती है, जवान महिलाओं के कैंप में। एक नेता ने मुझे ये कहानी बतलाया एक जवान महिला के अनुभव के बारे में। ये लड़की कम सक्रिय थी और वो थोड़ी शक्की की जंगलों में धार्मिक अनुभव पाने के बारे में। पहले दिन के बाद उसने नेता से कहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मगर क्या हम आत्मा के बारे में वो सब भाषण बंद कर सकते हैं? मैं यहाँ कैंप के लिए आई हूँ, खुले हवा का आनंद लेने, सहेलियों के साथ रहने और मौज मनाने के लिए। हालांकि समाप्ति के गवाही देने के अभाव पर उस लड़की ने आंखें में आंसू लिए स्वीकार किया, मैं घर नहीं जाना चाहती। कैसे मैं जिस आत्मा अभी महसूस कर रही हूँ मेरे साथ हमेशा रखूंगी। उसने पवित्र स्थान पा लिया था। एक और पवित्र स्थान जोसेफ स्मिथ के जीवन में उसका कमरा था। ये विश्वास करना कठिन होगा क्योंकि आप सबकी तरह वो अपने भाइयों के साथ रहता था एक कमरे में। वो उसके लिए एक पवित्र स्थान बन जाता था जब वो बहुत विश्वास से, विनम्रता से और जरूरत होने पर प्रार्थना करता वहाँ पर। जोसेफ के पवित्र जंगल के अनुभव के बाद के 3 साल आसान नहीं था। 17 साल के जोसेफ निरंतर मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया और सताया गया, मगर उस रात को उसके कमरे में फरिश्ता मोरोनाई दिखाई दिया। उसके प्रार्थना के जवाब में जोसेफ ने ज्ञान और सहानुभूति प्राप्त किया। उस रात को उसका कमरे एक पवित्र स्थान बन गया था। एक मोमन मैसेज, मैंने एक और कमरा देखा जो एक पवित्र स्थान बन गया था। वीडियो में इंग्रिड लगाडो दिखती है, एक जवान महिला एल सल्वाडोर की जो मंदिर के बारे में अपने एहसास बतला रही है। वो कहती है, ये जानना अच्छा है कि एक स्थान है जहां हम दुनियादारी के चीजों से दूर हो सकते हैं और पवित्र धर्म विधियां प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मदद कर सकते हैं जो उन्हें इस जीवन में नहीं प्राप्त कर सके। वो बात करती है और वीडियो में इंग्रिड को अपने धर्मशास्त्र पढ़ने देखे जाते हैं। मोमन विज्ञापनों खोतेश पर्सनल प्रोग्रेस का किताब, उसके परिवार और मंदिर के चित्र और हाँ उसके प्रसन्नता खेलने वाले जानवरों से घिरे हुए। फिर भी एक और अपरियाशित पवित्र स्थान जोसेफ स्मिथ के जीवन में लिबर्टी जेल था। एल्डर जेफरी आल हॉलन ने कहा, जोसेफ के जीवन में इससे अधिक भारी समय नहीं था इस क्रूर गैर कानूनी और अनुचित कैद की तुलना में। एल्डर हॉलन ने बतलाया कि लिबर्टी जेल को एक कैद का मंदिर कहा जाता है उन पवित्र अनुभवों के कारण जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को हुए जब तक वो वहां थे। आप में से कुछ जवान महिला अपने खुद के लिबर्टी जेल अनुभव कर रहे हैं, एक जहां तुम्हारे अपमान किया जाता हो, एक जहां कोई प्यार दया नहीं है, एक जहां तुम्हारे मजाक उड़ाया जाता, तंग किया जाता या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता। आप जवान महिलाओं के लिए मैं एल्डर हॉलैंड के शब्दों को प्रदान करता हूँ। आपको पवित्र प्रतिकारण प्राप्त करने वाले और गहरी शिक्षा पाने वाले अनुभव होगी प्रभु के साथ तुम्हारे जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव में दर्द भरे अन्याय को सहते हुए, जबकि तुम अपने जीवन सबसे बुरे विरोधी का सामना कर रहे हो। अन्य शब्दों में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की तरह तुम पवित्र स्थान को बना सकते और उनमें खड़े हो सकते हो सबसे कठिन समय में भी। एक जवान बाली क्रिस्टन ने अपने एक दुख अनुभव मुझे बताया। हाई स्कूल उसका लिबर्टी जेल था। सौभाग्य से संगीत का कमरा उसके सहायता पहुंचाता। उसने कहा, जब मैं इस कमरे में जाती ऐसा लगता कि मैं एक सुरक्षित स्थान में आ गई हूँ। हमने दया का अभ्यास किया, यह एक खुश जगह था। संगीत के कमरे में बहुत ऐसी से आत्मा मौजूद थी जब हम अभ्यास करते और संगीत बजाते। आज रात क्या तुम अपने पवित्र स्थान पर गौर कर रहे थे? मैंने कई जवान महिलाओं से कहा है कि वो अपने पवित्र स्थान को मेरे साथ बांटे, चाहे वो इलाका के हिसाब से वो हो या समय के चयन के हिसाब से, वो तभी भी पवित्र है और शक्तिशाली है। ये है उनके नए स्नेही जवाब। पहला, मैं अस्पताल में थी अपने अभी पैदा हुए भाई को लिए हुए। दूसरा, हर बार मैं अपनी कुलपति का आशीर्वाद पढ़ती हूँ मैं महसूस करती हूँ कि स्वर्ग पिता मुझे जानता और मुझसे प्रेम करता है। तीसरा, जिस दिन मैं 12 की हुई वोट की जवान महिला ने मेरे दरवाजा को कागज से दिलों से सजा दिया। चौथा, जब मैं अपने धर्मशास्त्र पढ़ रही थी एक दिन वाकई में मेरे बाहर निकला, मैंने अपने प्रार्थनाओं के जवाब पा लिया था। पांचवा, मैं एक पार्टी में गया जहां लोग शराब पी रहे थे। आत्मा ने मुझसे कहा, पीछे मुड़ो और घर जाओ। छठा, प्रभु भोज के दौरान मैं प्रेषित के बारे में सोच रही थी। मुझे याद आया कि मुझे किसी को माफ करना है जिससे मैं क्रोधित हूँ। मेरे माफ करने का चुनाव एक अच्छा कार्य था जिससे प्रेषित मेरे दैनिक जीवन का भाग बना। सातवा, अपनी माँ के साथ न्यू बिगिनिंग्स के कक्षा में जाने के बाद में उसने मेरे गाल पर चुम्मा दिया और मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। मेरी याददाश्त के अनुसार ये पहली बार था कि उसने ऐसा किया। आठवा, मेरे बिशप के आश्वासन से मैंने जाना कि धर्मशास्त्र के वादे सच्चे हैं। भले ही तुम्हारे पाप लाल क्यों न हो, उसे बर्फ की तरह सफेद किया जाएगा। अंत में एक शाम मैंने हिम्मत बांधा कि मैं सुसमाचार और मोमन धर्मशास्त्र के बारे में अपने एहसास को अपने सबसे अच्छे दोस्त को से बांटूं। बाद में मेरा सौभाग्य हुआ उसकी बपतिस्मा में जाने का। अब हम गिरजाघर एक ही जगह जाते हैं। क्या मैं अपने एक पवित्र स्थान के बारे में आपको बतलाऊं? एक बार मैं उत्सुक घबराए हुई और बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। बिना आवाज किए मैंने प्रार्थना किया, स्वर्ग पिता, मैं नहीं जानती कैसे करना है, कृपया कृपया मेरी मदद करें। थोड़ी देर में कोई आगे आया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। उस समय मैंने शांति महसूस किया, मैंने आभार महसूस किया, सब कुछ बदल गया था। प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल के शब्द मुझे याद आया, परमेश्वर जरूर हमें देखता है और हमारी परवाह करता है, मगर ज्यादातर वो किसी और के जरिए हमारे जरूरतों को पूरा करता है। प्रिय जवान महिलाओं, कई अन्य पवित्र स्थान हैं जिसकी मुझे इच्छा है कि हम एक दूसरे से बात सकते। जब हम आज रात घर लौटे, मैं कहती हूँ कि तुम अपने जर्नल में उन स्थान के बारे में लिखना जो तुम पहचान रहे हो और याद कर रहे हो। मेरे लिए साफ है कि तुम में से कई महिलाओं पवित्र स्थान में खड़े हैं। ये स्थान तुम्हें सुरक्षा, ताकत और शांति दे रही है मुसीबतों के समय में। तुम्हारे गवाही मजबूत हो रही है।
I love you.
हाँ, गिरजाघर के शानदार व्यू मेरे हीरो है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं स्वर्ग पिता के बेमिसाल प्रेम को तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ और मैं अपनी गवाही देती हूँ कि यीशु मसीह का सुसमाचार सच्चा है। वो इंतजार कहा रहे। मैं प्रधान थॉमस मॉन्सन को प्यार और स्वीकार करती हूँ, हमारे सच्चे और प्रोत्साहन देने वाले भविष्यवक्ता। मैं ये शब्द यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन।
It is an honor for
यह मेरे लिए सम्मान की बात है आप सब गिरजाघर के विश्वासी जहान महिलाओं से बातें करने में. हम तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपने वादों को निभाते हुए, और हम जानते हैं कि शुद्ध जीवन तुम्हारे पूर्वजों, हम तुम्हारे अपने अभी के परिवार और तुम्हारे आने के परिवारों के अरिशात देगा. जिस तरह प्रधान गॉर्डन बी हिंकली ने कहा, जब तुम एक लड़की को बचाते हो, तुम पीड़ाओं को बचाते हो. तुम्हारा वादा करने के जीवन समय शुरू हुआ जब तुमने बपतिस्मा को लिया और पवित्र आत्मा के ऊपर को प्राप्त किया. अभी समय है तुम्हें अपने बपतिस्मा के वादों को बनाने के लिए. वे पवित्र धर्म विधि और वादे जो मंदिरों में बनाए जाते हैं मदद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति लौटने में हमारे परिवारों को अनंतना के लिए जुड़ने के लिए. अपने पूर्वजों के लिए पवित्र स्थानों में खड़े रहो. सभी इंसान जो इस धरती पर आते हैं वे पीढ़ियों के माता पिताओं के परिणाम हैं. जब तुम परिवार इतिहास और मंदिर के कार्य में भाग लेते हो, अपने पूर्वजों के साथ नजदीकी संबंध को बनाते हो उनके लिए बचाने वाले धर्म विधियों के प्रदान करने से. तुम्हारे सही उदाहरण महान खुशी का कारण होगा तुम्हारे परिवार परिस्थितियों के बावजूद. अपने भविष्य के परिवारों के लिए पवित्र स्थानों पर खड़े रहो. अपने पति के लिए के साथ मंदिर में पवित्र पुरोहिती से बनने का निर्णय कर लो जब तुम अनंत परिवार दाल शुरू करते हो. तुम्हारे बच्चों को सच्चाई के आशीर्वाद मिलेगा जब तुम उन्हें शुद्ध उद्धारों दोगे और एक मजबूत गवाही उनके जीवन में और उनके वादा के मार्ग का रास्ता दिखाओगे. मैंने इन अनंत सिद्धांतों को अभी एक इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन जो युवा के लिए था में देखा. मेगन वार्नर टेलर ने डिजिटल क्रिया से फोटोग्राफी का कला दिखाया. मसीह के 10 कुवारियों के नीति कथा के मॉडर्न नजरिया लेते हुए मैंने मेगन से मिली और उसने 10वें कुवारी का मतलब बताया जिन्हें उसने एक सद्गुण और विश्वास से भरे जवान महिला की तरह बतलाया जो तैयार थी पवित्र मंदिर के वादन को बनाने और निभाने के लिए. मैंने उसके बालों को सुंदर चोटी में बंधे हुए देखा. मेगन ने बतलाया कि वह सुंदर चोटी यह दिखलाता था कि जीवन महिलाएं का शुद्ध जीवन अग्निगत पीढ़ियों की बुनाई की तरह है. एक लात उसके प्यार के बुनाई को दिखलाता है उसके परिजनों से अदर को. दूसरे उसके अभी एक परिवार के साथ है सही प्रभाव को. और तीसरा उसके तैयारी भरी जीवन से आने वाली पीढ़ियों के लिए. मैंने एक दूसरी जवान महिला को भेंट किया था जो जल्द का धार्मिक तैयारी न कई पीढ़ियों की जीवन में सच्चाई भर दिया था. एक सुंदर सितंबर की शाम को मैं और मेरे पति मंदिर में थे. क्रिस एक हमारा दोस्त कमरे में दाखिल हुआ. इस जीवन पुरुष को देखकर अभी वह जल्द रशिया के मिशन से वापस आया था. जब सभा शुरू होने वाली थी एक प्यारी जवान महिला मेरे बगल में बैठ आई. मैंने उसे जानना चाहती थी तो मैंने अपने धीरे से पूछा. उसने धीरे से अपना नाम केत बतलाया और मैंने उसके आखिरी नाम को जाना. एक परिवार जो मिशिगन में रहता था जहां उसकी परिवार पहले रहती थी. सभा के दौरान में मन में एक बात दोहराती रही, केट को क्रिस से मिलाओ. मैंने इस प्रेरणा को सोचा, कब, कहाँ, कैसे. जब हम जाने के तैयार कर रहे थे क्रिस हमसे अलविदा कहने के लिए इस आया और मैंने उस अवसर का इस्तेमाल किया. मैंने केट को अपनी ओर लाया और बोला, तुम दोनों शुद्ध जवान हो जिन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए. मैं मंदिर से सुशांत होकर निकली कि मैंने अपना प्रेरणा का पर काम किया था. घर जाते समय मैंने मेरे पति और मैंने केट के परिवार के बीते चुनौतियों को याद किया. उस समय के बाद मैंने केट को अच्छी तरह से पहचाना और उसने मुझे मदद किया था कि उस दिन मंदिर में उज्जवल चेहरे के वजह को समझाने में. केट ने हमेशा अपने वादों को काम के मार्ग पर रहने की कोशिश किया था। वह उस घर पर बड़ी हुई थी। घरेलू शाम सभा, साथ में प्रार्थना और धर्मशास्त्र को अध्ययन करने से उसका घर पवित्र स्थान बना था। जब वो बच्ची थी उसने मंदिर के बारे में सीखा था और आई लव टू सी द टेम्पल के गीत परिवार घरेलू शाम सभा में गाना पसंद किया था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसने अपने पुरोहिती अधिकार के इस्तेमाल किया था उसे अपने बपतिस्मा के का पहला वादा पूरा करने में मदद करने में। उसके सिर पर फिर हाथ को रखने से उसे पवित्र आत्मा दिया गया। केट ने कहा, मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए उतौली और मैं जानती थी कि मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर रहने में मदद करेगा। केट के लिए जीवन बहुत आशीर्वाद और खुशी थी। एक दिन हाई स्कूल में वो 14 साल की थी, उसके शिक्षक ने मुसीबतों के बारे में बातें करना शुरू किया और बतलाया कि हम सब उसे झेलेंगे। उसने खुद से कहा, मैं मुसीबतों को नहीं चाहती हूँ, मैं इसके बारे में सुनना ही नहीं चाहती। उसके कुछ ही सप्ताह बाद पिता ईश्वर रविवार को बता हमारे बहुत बीमार पड़े। उसने कहा, मेरी माँ बहुत ही दुखी थी यह देखकर कि वह इतने बीमार हो पहले। वह झपक सकता है मगर उसके अंग काम के नहीं कर रहे थे। मुझे याद है उसे देखना और सोचा, अरे नहीं, यह होने लगा। मेरे सेमिनरी शिक्षक सही थी, मैं मुसीबत में कुछ में हूँ। और केट ने कहा, यह कितना मुश्किल था, तुम अपने जीवन के हीरो को नहीं खोना चाहते। मैं जानती थी कि उसे अनुमति की शक्ति थी मुझे बंधाने में या मुझे बनती हुई। मैं अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगी। आलमा अध्याय 40 ने मुझे आश्वास दिया कि पुनहार जीवन सही है और मसीह के प्रेषित के सम्मान पिता के साथ दोबारा रह सकती हूँ। मैंने बहुत प्रार्थना किया। मैंने अपने जर्नल में लिखा, मैं गवाही को लिखते और रही और उसे खोने नहीं दिया। मैं गिरजाघर और जवान महिलाओं में सप्ताह गई। मैं देखरेख करने वाले संबंधियों और खासकर अपने माँ के करीब रही और हमारे परिवार का शक्ति का वजह थी। मैंने अपने नाना और दूसरे पुरोहितों के रखने वालों से पुरोहिती का आशीर्वाद लिया। उसे उसके पिता के साथ दोबारा होने की इच्छा थी। वह उसके साथ अंत तक का संबंध चाहती थी और वह जानती थी कि वादे को निभाने से अपने जीवन को उसके साथ बन सकती थी। फिर भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। जब केट 21 थी और मिशन के प्रेपरेशन कर रही थी, उसकी माँ का कैंसर इलाज हुआ। केट को अपने जीवन में जरूरी निर्णय लेना, क्या वह अपने घर रही या मिशन पर जाना चाहिए। उसकी माँ को पुरोहितों का आशीर्वाद वादा दिया गया कि वह उसे बच जाएगी। इस आशीर्वाद से निश्चिंत होकर केट विश्वास के आगे बढ़ी और मिशन के सेवा को करने के लिए का निर्णय किया। केट ने कहा, मैं विश्वास से आगे गई और मेरी माँ का प्रॉमिस ठीक संबंधित हुआ। मैं इतना खुश हुई कि मैंने प्रभु की सेवा में देर नहीं किया। जब बड़ी मुसीबतें आई, हम आगे बढ़ नहीं पाए और बनना के चाहते हैं, मगर जब तुम प्रभु को पहले रखोगे, दुर्भाग्य आशीर्वाद में बदल जाएगा। केट ने प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के शब्दों के सच्चाई को अनुभव किया। हमारे सबसे महत्वपूर्ण असरों बड़ी मुसीबतों के समय पर मिलेगा। केट के पास इस तरह का विश्वास था कि क्योंकि उसने मुक्ति को योजना का समझ लिया था, उसके पास विश्वास था कि उसकी माँ को आशीर्वाद मिलेगा। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपने पिता की मौत को नहीं झेला, यह मेरे भाग का एक अच्छा पहचान बना और मेरे माँ को मरने पर वही होता। यह मेरे जीवन में एक और महान गवाही को दे देती। केत एक पवित्र स्थान को ढूंढ रही थी उस रात जब मैंने उससे मंदिर में देखा। अनंत संबंधों के बांधने की इच्छा से वह मंदिर सेवा मैंने आई। उसने अपने माता पिता के हमेशा मंदिर जाने का आकार को बनाए रखा। बहुत कुछ नहीं हुआ उस रात। केट और क्रिस मिले। केट ने क्रिस को हजारों जवान अविध बुजुर्गों के बीच एक इंस्टीट्यूट भक्ति में देख लिया था। कुछ सप्ताह बाद क्रिस ने उसे अपने साथ महासम्मेलनों को देखने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने पवित्र स्थान की खोज रखी। दोनों अब माता पिता का की पवित्र जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अपने तीन छोटे बेटों की जवान जीवन में मुक्ति की योजना के गवाहियों को बना रहे हैं। उनके वादे के मार्ग के रास्ते दिखलाते हुए, जब तुम एक लड़की को बचाते हो, तुम पीढ़ियों को बचाते हो। केत का निर्णय एक 14 साल की उम्र में मार्ग पर रहना ने, जो उस मशाल ने लगातार तेल देता है, और पवित्र स्थान में पर रहने से पीढ़ियों को बचाया है और बचाएगा। परिवार इतिहास और मंदिर कार्य के में काम करने से तुम्हारे हृदय को साथ जोड़ेगा और तुम्हारे पूर्वजों को अनंत जीवन से अवसर देगा। और आगे जैसे एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स ने कहा, अगर जो उद्धारों हमने अपने माता पिता से पाया था अच्छा नहीं था, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम बदल दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही परंपरा को सिखलाएं। अभी निर्णय लो अपने मशाल को तेल से भरने के लिए कि तुम्हारे शक्तिशाली गवाही और उदाहरण के पिछले अभी के और आने वाले पीढ़ियों के जीवन में रहेगा। मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हारे शुद्ध जीवन सिर्फ पीढ़ियों को बचाएगी नहीं, बल्कि ये तुम्हारी अनंत जीवन को बचाएगी, कि यह एक ही रास्ता है स्वर्ग के पिता के वापस जाने के लिए और अभी अभी अनंत तक खुशी होने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
मैं आशा करती हूँ कि जब तुम उस वीडियो को देख रहे थे, तुमने अपने आप को देखा होगा, तुम्हारे सच्ची चुनाव को और तुम्हारे आने वाले जीवन को, जब तुम पवित्रवादों को बनाते और निभाते हो। एक सच्ची महिला जो आत्मा से चलती है दुनिया को बदल सकती है। मुझे सौभाग्य है तुमसे बातें करने में। मेरे संदेशों के बाद गायक मंडली ओ द रॉक ऑफ आर सर्वेशन गाएंगी।
आज रात मैं इस पवित्र स्थान में खड़ी हूँ भविष्यवक्ताओं, देवदूत और प्रकट करने वाले और परमेश्वर की राजवंशी पुत्रियों की उपस्थिति में। ये एक शानदार समय है धरती पर होने का और एक जवान महिला होने का। तुम प्रभु के चुने हुए पुत्रियां हो, वो तुम सबसे प्यार करता है और मैं भी करती हूँ। मेरे दफ्तर के मेज पर एक पीतल का मूर्ति है जो एक जवान महिला क्रिस्टीना का है। क्रिस्टीना के बराबर मूर्ति डेनमार्क कोपेनहेगन के खंभे पर खड़ी हुई है ताकि समुन्दर से बाहर जायोन को देख सके। उसका गिरजा घर में जोड़ने का फैसला और अपने घर को छोड़ने का एक आसान फैसला नहीं था। वो धगमगाई नहीं थी, बहुत ही मुश्किल कार्य किया, मगर जो वो जानती थी कि सच्चा है। उसके वंशज ने इस मूर्ति को यहाँ पर उस खंभे पर क्रिस्टीना को उपहार देने के लिए रखा है। उसकी उस दिन का फैसला वंशों के लिए अनंत महत्व का है। मेरे लिए इस क्रिस्टीना की मूर्ति तुम सब की तरह है। क्रिस्टीना की तरह तुम भी बहुत जरूरी फैसला का सामना करती हो और हर दिन चुनाव करती हो। उनमें से कुछ मुश्किल है जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे आने वाले कल के लिए ही नहीं होगा, मगर आने वाले वंश का किस्मत होगा। तुम भी विरोध, दुर्भाग्य और उम्र के दोस्तों का प्रभाव और नैतिक अपवित्रता का सामना करते हो और फिर भी तुम धगमगाते नहीं हो और सुसमाचार में जीते हो। हमारे समाज की मुसीबतों को झेलते हुए क्रिस्टीना की तरह तुम्हें भी पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देती है। तुम सही फैसला बनाती हो, तुम वफादार और राजवंशी हो। स्वर्ग के पिता की जरूरी सलाह में से ज्यादा जरूरी उसके चेतावनी को देती हूँ कि पवित्र स्थान पर खड़े रहो और धगमाओ नहीं। वो कहता है कि अटल रहो, अचल रहो, सच्चाई और धार्मिकता के लिए खड़े रहो, गवाह बनो, दुनिया के लिए स्टार बनो, पवित्र स्थान पर रहो। और इस तरह तुम सबके लिए मेरे साधारण सा संदेश है, धगमगाओ नहीं। सही चुनने में धगमाओ नहीं। इन अंतिम दिनों में यहाँ पर कोई छोटे फैसले नहीं है। जो चुनाव तुम अभी कर रहे हो वो अधिक जरूरी है। एजेंसी या चुनने की क्षमता परमेश्वर की एक महान उपहार है उनके बच्चों के लिए। यह खुशहाली की योजना का भाग है जिससे तुम और मैंने चुने थे और बचाए थे हमारे मरणशील जीव से पूर्व में। उस तरह से अपने जीवन को बिताओ कि पवित्र आत्मा को सुन सको और वह तुम्हें सही चुनाव करने में मदद करेगी। कई हफ्ते पहले मैं अपने पुराने पाठशाला गई, कई सालों पहले बार। मैं एक स्टेक सम्मेलन में भाग ले रही थी जो पाठशाला के रंग भवन में हो रहा था। जब मैं अपनी पाठशाला के रंग भवन से नीचे आ रही थी, मेरे मन में कई यादें ताजे हो गई। मैंने उसी तरह महसूस किया जैसे मैंने जवान महिला पर होने पर किया था। आशुरिक्षता, अपने से अनजान, आत्मा सतर्क, उसमें जाने के लिए अभिलाषा थी। मैं रंग भवन में गई, फिर मेरे मन में याद उभर आई। मैं उस रंग भवन को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी, सिर्फ एक चीज बदला था, मैं। उस दिन मुझे अवसर प्राप्त हुई कि मैं उस मंच पर खड़ी हो सकी, उसी तरह जैसे मैं पाठशाला में भी बार एक विद्यार्थी अफसर की तरह खड़ी हुई थी। मैंने अपने कुछ पुराने साथियों को सभा में भी देखा था, कुछ को मैंने डेट किया था, मगर इस समय सभा को संचालन करने के बिना मुझे मौका प्राप्त हुई कि मैं अपने पाठशाला के रंग भवन में साक्षी के रूप में खड़ा होना चाहती थी और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के गवाही को बयान करना चाहती थी। जवान महिलाओं, याद रखो कि तुम्हारे दूसरों के साथ रिश्तेदारी ऐसी हो कि तुम अभी से 40 साल बाद शर्मिंदा नहीं होगे। हमारा दोस्त का दबाव कोई भी प्रसिद्धता समझौता का लायक नहीं है। तुम्हारा प्रभाव जवान पुरुष को मदद करने, उन्हें पुरोहित के सशक्ति के योग्य रहने में, मंदिर के वादों और प्रचारक की सेवा के लायक रहने में। 40 सालों बाद उनमें से कोई तुम्हारे पास चलकर आ सकता है यहाँ तुम्हारे पाठशाला के रंग भवन में और तुम्हें धन्यवाद देगा उन्हें उनके पुरोहित के कार्य से लायक मिशन की सेवा को पूरा करने के लिए। तुम शायद उनसे पत्र हासिल करो जो उनमें से किसी की पत्नी से तुम्हें धन्यवाद दे अपने पति और अपने आने वाले परिवार पर प्रभाव के लिए तुम्हारे पाठशाला के दिनों से लेकर। उनके अनंत महत्व है, धगमगाओ नहीं। अपने इच्छा और वचन पर शुद्ध और यहाँ यो संबंध में साफ रहने से धगमाओ नहीं, शुद्ध रहो। तुम्हारी व्यक्तिगत सफाई तुम्हारी शक्ति का महान जारी है। जब तुम धरती पर आए, तुम्हें अनमोल शरीर का उपहार मिला। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन का संचालन करता है और एक दिव्य उपहार जिससे तुम एजेंसी को अमल ले में ला सकते हो, या एक उपहार है जो शैतान को नहीं प्राप्त हुआ, और इस प्रकार वो अपने सारे आक्रम को तुम्हारे शरीर पर करता है। वो चाहता है कि तुम अपने शरीर को नफरत, दुरुपयोग, दुर्व्यवहार करो, अश्लील कपड़े, अश्लील चित्र, अनैतिकता, गोदना गोदाना और कई छेद नशीले प्रधारण का दुरुपयोग और सभी तरह के लेते महान उपहार पर कब्जा करने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारा शिक्षा को इस्तेमाल नहीं करने देने वाले। तुम्हारे शरीर एक मंदिर है, क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ तुम्हें अनंत आत्मा को रखने की शक्ति नहीं, बल्कि उन दूसरों की जो इस धरती पर तुम्हारे अनंत परिवार की तरह आगे का भी। एल्डर डेलन एच ऑक्स ने सिखलाया, मरणशील जीवन को बनाने की शक्ति एक अनंत जीवन की शक्ति है। तुम्हारा भूमिका एक अनंत भूमिका है। परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र भरोसा दिया है। तुम आने वाले पीढ़ियों का माँ बनने की तैयारी कर रहे हो। अपने आप को साफ और लायक रखो ताकि जो सबसे प्रिय और अलमोल है, तुम्हारे सद्गुण और शुद्धता का सुरक्षित रख सको। जब स्वर्ग पिता पुत्रियों को चुनता है, उसका अच्छा सलाह सिर्फ तुम्हारे लिए है कि उसके आगे आगे सद्गुण के रास्ते पर चलो। सद्गुण मंदिर के लिए सबसे जरूरी चीज है। पवित्र वादों को बनाने और निभाने में मत दगमगाओ, पर लायक बना रहो। जो वादा तुमने बपतिस्मा पर लिया है, सद्गुण और खुशियों के मार्ग पर तुम्हें सुरक्षित रखने जब तक तुम हर सप्ताह प्रभु भोज को दोहराओगे। जब तुम अपने बपतिस्मा के वादे को निभाते हो, तुम दूसरी तरह दिखोगे, दूसरी तरह कपड़े पहनोगे और दुनिया से दूसरी तरह कार्य करोगे। इस वादे को निभाने से पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन देगा। अंत में उद्धारकर्ता के प्रायश्चित को स्वीकार में दगमगाओ नहीं। प्रायश्चित तुम्हारे और मेरे लिए है। यह एक लायक बनाने और मुक्ति दिलाने वाले शक्ति है। अगर तुम पवित्र स्थान पर खड़े रहने के लायक नहीं महसूस करते हो, इस पाप के बोझ को एक दिन और नहीं उठाओ। मरणशीलता में हम सब गलतियां करेंगे। यह जानो कि उद्धारकर्ता तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने तुम्हें बदलने का मौका दिया है, और पश्चाताप करने का अगर कोई गलती हो जाए, शैतान यह नहीं चाहता कि तुम बदलने की सोचो। तुम पश्चाताप कर सकते हो, तुम साफ और पवित्र हो सकते हो, क्योंकि उद्धारकर्ता के कभी न खत्म होने वाले प्रेषित की है। अब मैं एक महान प्रेम कहानी को बतलाना चाहती हूँ। तुम शायद पूछोगे, प्रेम की कहानी का पवित्र स्थान पर खड़ा रहने से क्या मतलब है? सब कुछ पवित्र स्थान पर खड़ा रहने से है। ये कहानी उस जवान महिला का है जिसके नाम है रेबेका था। जब ये कहानी बतलाई जाती है, अब्राहम अपने सेवक को अपने पुत्र आइज़क के लिए पत्नी को ढूंढने के लिए आज्ञा देता है। वो शादी के वादे के लायक होना चाहिए, शुद्ध और साफ और लायक, और वह अपने सेवक को लंबे और खतरनाक सफर को भेजा है हेरन नामक स्थान पर। यह पवित्र पुरुष को पवित्र महिला की जरूरत है उसकी सहायता देने और मदद के लिए। जब सेवक हेरन नाम के जगह में पहुंचा, वो एक कुएं पर रुका अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए, और उसने प्रार्थना किया कि वो सही जवान महिला तक पहुंचाए और वो उसके लिए और उसके 10 ऊंटों को पानी देने से उसे पहचान सके। जेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि जब रेबेका ने सिर्फ कुएं में जाकर पानी नहीं निकाला था, बल्कि वो फुर्तीली थी या इस कार्य को करने के लिए दौड़ी। फिर सेवक ने रेबेका को चूड़ियां और गहना दिया और पूछा कि क्या उसके पिता के घर में कोई कमरा है उसके रहने के लिए। मैं जानती हूँ कि गहने से मदद मिलेगा। धर्मशास्त्र में बतलाया गया है कि और वह दौड़ी और अपने माँ के घर पर जाकर सब कुछ बतलाया। सेवक ने रेबेका के परिवार को उसके आने का कारण बतलाया और रेबेका आइज़क की पत्नी बनने को तैयार हुई। सेवक ने दूसरे दिन ही रेबेका के साथ जाने को सोचा, मगर उसके परिवार ने उसे उनके साथ 10 दिनों तक रहने को कहा। फिर उन्होंने रेबेका से पूछा कि क्या वो क्या चाहती है, और साधारण उसका जवाब था कि मैं जाऊंगी। क्या ये जवाब सुनना हुआ लगा है हजारों की तरह जिन्होंने तुरंत ही जवाब दिया था, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा? जब हमारे भविष्य वक्ता थॉमस मॉन्सन ने बताया था कि जवान पुरुष और जवान महिला को मिशन सेवा करने का अवसर और कम उम्र में मिलेगा। अब इस प्रेम कहानी का नीति और अंत रेबेका तैयार और लायक थी इस पवित्र वादों को बनाने और निभाने के लिए, और आइज़क की वादे की पत्नी बनने के लिए। उसे इंतजार करने अपने आप को तैयार नहीं करने पड़ा था। अपने परिवार से बिछड़े समय उसने आशीर्वाद मिला, और वो शब्द मेरे लिए नाजुक है। उसे वादा दिया गया था कि वो हजारों मिलियनों की माँ बनेगी, मगर इस प्रेम कहानी का सबसे अच्छा भाग है जब रेबेका ने पहले बार आइज़क को देखा था और उसने उसे पहले बार, ये बाइबल में नहीं बतलाया है मगर मुझे लगता है कि ये पहली नजर का प्यार था, इसलिए क्योंकि सद्गुण को सद्गुण से प्रेम है, रोशनी रोशनी को ढूंढता है। जब आइज़क बाहर डल को मिलने गया, रेबेका ऊंट से उतर गई और उसने कहा, उसने प्यार किया। वो दोनों रेबेका और क्रिस्टीना के लिए पवित्र स्थान पर खड़ा रहना आसान नहीं था, धगमगाने से रुकना आसान नहीं था। हवा तेजी से चलने लगी, कुएं पर पानी वजनदार था, और उनके पहले के घरों और पहले के जीवन को छोड़ना आसान नहीं था, मगर उन्होंने सही चुनाव को बनाया था। उन्होंने पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त हुई थी। उद्धारकर्ता रेबेका यीशु मसीह रेबेका का एक वंश है। क्या रेबेका उस समय यह जानती थी कि यह होगा? नहीं। क्या अब तुम्हारे चुनाव मान रखता है? हाँ। जवान महिला, यह तुम्हारे अवसर है, तुम्हारा सामना किस्मत है। पीढ़ियां तुम्हारे पवित्रता, तुम्हारे आज्ञाकारिता, तुम्हारे योग्य जीवन पर निर्भर है। तगमाओ नहीं, तुम्हारे पास महान किस्मत है तुमसे पहले, यह तुम्हारे समय है। मैं गवाही देती हूँ कि उद्धारकर्ता जीवित है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें मदद करेगा, और मुसीबतों के समय उसके देवदूत तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा तुम्हें मदद करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
What a glorious blessing.
कितना महान आशीर्वाद है युवा के साथ इकट्ठा होने में। धन्यवाद गायक मंडली की जवान महिलाओं को अपने संगीत के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हम हमेशा आज रात के एहसास को याद रखेंगे और प्रेरित सलाम जो हमें मिली है। हम सभी के आभारी हैं जिन्होंने इस शाम में भाग लिया है, दोनों शब्दों और संगीत में, और सभी को जिन्होंने किसी भी तरह से मदद की इस सभा को सफल बनाने में। अब हम प्रधान डायरेक्टर एफ उचटॉक के भाषण को सुनेंगे, जो प्रथम अध्यक्ष था के दूसरे सलाहकार हैं। उनके संदेश के बाद गायक मंडली गाएंगी लेट जायन इन हर ब्यूटी राइज। उसके बाद एमिली मैक्सवेल द्वारा संपाती प्रार्थना दी जाएगी, जो स्टर्लिंग हाइट्स वार्ड में एक लॉरल है।
We are honored this evening.
हम शाम प्रधान थॉमस एस मानसन के साथ होने के लिए आभारी हैं। प्यारे पवित्र वक्ता, हम हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारी बहनों, संगीत और बोले हुए शब्दों के लिए धन्यवाद। वे प्रेरित करने वाले और इच्छा के लिए उचित है। वह पवित्र उत्साह जो हम इस सप्ताह मनाते हैं। तुम सब अनमोल जवान बहनों और तुम्हारे माताओं और तुम्हारे आश्चर्य नेताओं के साथ यहाँ होने में मुझे आनंद होता है। तुम्हारे पास रोहान आत्मा और मुस्कानी है। वास्तव में प्रभु तुम्हारे पहचानता है और स्वर्ग से प्यार से देखता है। मैं ज्यूरिख में पैदा हुआ, पहले के पूर्व जर्मनी में जब मैं 11 साल का था, मेरे पिताजी राजनीति में विरोध दल में थे और मेरे माता पिता ने सोचा कि हमारे परिवार के लिए पश्चिम जर्मनी जाना सकता है। यह फैसला किया गया है कि अलग समय पर सफर करना सुरक्षित होगा और दूसरे रास्तों से हमारे सारे चीज़ों को छोड़कर। जबकि मेरे पिता सबसे खतरे में थे, उसने सबसे जल्द के सफर को किया बर्लिन के रास्ते। मेरे बड़े बहनों ने उत्तर से सफ़र किया और हर एक ने पश्चिम तक का अपना खुद का रास्ता तय किया। मेरी बहन जो आप में से किसी की उम्र की थी उस समय, हेल्गा फेसमैन के साथ थे। उसकी जवान महिलाओं की शिक्षक और कुछ दूसरों ने रेलगाड़ी को पकड़ा और पश्चिम जर्मनी से गुजरता था। उन्होंने एक दरवाजे के खोलने वाले को पैसा दिया उनके लिए दरवाजे को खोलने के लिए, और जब रेलगाड़ी पश्चिम जर्मन सीमा में बाहर निकला गया, वह चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया। किस तरह मैंने अपनी छोटी बहन की प्रसारण किया। मैं सबसे छोटा बच्चा था और मेरी माँ ने फैसला किया कि वह और मैं एक पहाड़ी इलाके से चलते हुए जाएंगे जो दो देशों को अलग करता है। हम रेलगाड़ी से वहां तक गया जहां तक हम जा सकते और फिर बाद में घाटों को चले। सीमा पर कड़ी निगरानी थी, मगर हमारे पास नक्शा थी और पता था कि किस समय और स्थान से गुजरने शिक्षित हो सकता था। उसने उस स्थान को बहुत ध्यान से देखा कि कोई उन्हें पीछे तो नहीं कर रहा था। एक कदम के बाद उसकी पैरों और घुटने कमजोर हो रही थी। सच में उसने सोचा हमने सीमा को अब पार कर दिया होगा। जब उसने सुरक्षित महसूस किया तब हम बैठ गए और अपने पिकनिक को भोजों को किया। पहली बार उस दिन मैं जानता हूँ उसने चैन की सांस लिया था। उसी समय हमने सीमा के चैन को देखा था। वो अब भी हमसे दूर था। हम पिकनिक सीमा की गलत और माना रहे थे। हम अभी भी पूर्व जर्मनी में थे। किसी भी समय सीमा पैदार आ सकते थे। मेरे माँ ने जल्दबाजी में हमारे दोपहर की भोजन कर को भरा और हम तुरंत ही पहाड़ के ऊपर चढ़े। इस बार हम रुके नहीं जब तक हम सीमा के उस पार नहीं जाए गए थे। इस प्रकार हमने परिवारों के सदस्यों ने चाहे अलग अलग रास्तों को चुना था और बहुत की तकलीफों को रास्ते पर महसूस किया था. अंत में हम अब सुरक्षित पहुंचाए. अंत में हम एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए. कितने मेहमान दिन था उस दिन. सफर की कहानियां जो मैं तुम्हें अभी बतलाया है वो एक अनुभव है जो मेरे लिए एक महान सफर है. अब मैं वापस अपने जीवन के उस पल को याद करता हूँ और उस तरह के कुछ सफर को याद कर सकता हूँ जो मैंने किया है. उन सभी में पहाड़ों का राजनीतिक सीमाओं को पार करना नहीं शामिल था. कुछ में ज़्यादा मुसीबतों से बाहर निकालना था और धार्मिकता में पढ़ना. मगर वह सब सफर थे. मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जीवन सफर की कहानियाँ से भरी हुई है. मैं जानता हूँ कि सभी सांस्कृतिक परंपरा सफर के कहानियाँ से भरपूर है. उदाहरण स्वरूप मैं दौड़ती और उसके कुत्ते टोटो के सफर को जानते होंगे जो विज़र्ड ऑफ ऑज़ के दौड़ती और टोटो के तूफान में बह जाते है और उसके इलाके पर चल जाते हैं. वहाँ दौड़ती उस विवेश विलयता के रास्ते को पाती है जो सफर के मार्ग को बतलाता है जो उसे घर ले जाता है. पर फिर वहाँ चार्ल्स डिकन एक एबनेजर स्क्रूज है जिसका सफर उसे स्थान पर नहीं ले गया बल्कि समय से समय तक यहाँ उसके हृदय के अंदर का सफर है जिसने उसकी मदद किया है समझने में कि क्यों वहाँ उस तरह बना और यह देखने में कि उसे क्या होगा अगर वह स्वार्थीपरण और आभारी नहीं होने के रास्ते पर चलता रहा. चाइनीज विद्या के एक महान उत्तम कहानी जर्नी टू द वेस्ट है. 16th सदी में लिखी हुई यह सुंदरता के खतरों की कहानी को बतलाता है और एक साधु की यात्रा जो चार मिलनसार स्वभाव के लोगों के मदद से हुआ था धार्मिक ज्ञान पाने के सफर में. और यहाँ पर बीबो बेल्गिंस है छोटा सा ब्रह्मत्र बाहर भरा नोहबिट जो घर पर रहा कर और अपने सूप को खाना पसंद करता था मगर अपने दरवाजे पर एक कटकहट के बाद वो महान अनजान नियुक्ति पर चल पड़ता है और दुनिया में ढूंढता है. एक सर्वजनिक कहानी. क्या हम इस सफर के कहानी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने आप को मुसाफिर की तरह देखते हैं. वह वीडियो जो हमें कुछ ही पहले देखा था वो भी एक सुंदर सफर के कहानी को बतलाता है. शायद हो भी हमें एक सफर को याद दिलाता है जो हम सब जानते हैं. यह कहानी बहुत समय पहले शुरू हुई दुनिया के रचना से बहुत पहले सूरज की गर्मी ठंडी स्थान पर पड़ने से बहुत पहले बड़े और छोटे जीव जंतु से हमारे धरती को बढ़ने से पहले. इस कहानी के शुरुआत से पहले तुम दूर सुंदर स्थान पर रहते थे. हम मरणशील जीव से पूर्व का कई बातें नहीं जानते मगर हम कुछ चीज़ों को जानते हैं. हमारे स्वर्ग के पिता ने हमें प्रकटीकरण दिया है अपने पहचान के बारे में. हमें कौन है और हम क्या बन सकते हैं. बीते समय के उस पहली अवस्था में तुम्हें वो ज्ञान था कि परमेश्वर है क्योंकि तुम्हें उसे देखा और सुना था. तुम यीशु मसीह को जानते हैं जो परमेश्वर का महिमा बनने वाला था. तुम्हें उस पर विश्वास था और तुम जानते हैं कि तुम्हारे किस्मत मनुष्य जीव से पूर्व के घर से की सुरक्षा में रहना नहीं था. जितना ही तुम उस आनंद माहौल के प्यार करते थे तुम जानते थे और चाहते थे कि तुम सफर पर जाओ. तुम्हें अपने पिता से दूर जाना होगा. भूलने की पर्दे से गुजरना पड़ेगा. मरणशील शरीर प्राप्त करना पड़ेगा और सीखना और अनुभव करना पड़ेगा उन चीज़ों को जो तुम्हें और भी ज्यादा स्वर्ग के पिता की तरह बनने में मदद करेगा और उसके पास वापस जाने में. उस पवित्र स्थान पर उनकी इर्द गिर्द जिन्हें तुम जानते और प्यार करते थे, महान सवाल जो तुम्हारे पास वो और सोच सकते हैं हो होना चाहिए कि कहीं मैं स्वर्ग के पिता के पास सुरक्षित तौर से पहुंच सकूंगा. यहाँ पर बहुत कुछ को सकता है कि तुम ना कर सको. मरणशील जीवन कभी कभी मुश्किल हो सकता है. अनजान अनुभवों के से भरे हुए बीमारियों, दिल का टूटना, दुर्घटनाएं, झगड़े, बिना ही तुम्हारे पहले की होने की याद के, बिना याद की कि तुम कभी स्वर्ग के पिता साथ साथ रहते थे, क्या तुम उसकी आवाज़ को भी मनसिल जीव के सारे शोर और दूसरे को रुकवाते में पचाएंगे? अगर आगे का सफ़र बहुत लंबा और अनिश्चित दिखाता, खतरा से भरा हुआ, यह सरल नहीं होगा, मगर तुम जानते थे हर कोशिश के लायक था. तो यह तुम्हें अपने आनंद सफ़र के शुरुआत में अब नए हलचल और आश्चर्य से दिखाते हैं हुए, और मैं कुछ चिंता और डर के साथ कल्पना करता हूँ. अंत में तुम जानते हो कि परमेश्वर नहीं करेंगे कि उसकी अच्छाई की जीत होगी. तुम्हें महान स्वर्ग के बताओ में भाग लिया था, और तुम जानते हो कि तुम्हारे उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए पाप से साफ होने के लिए रास्ता बनाएंगे. तुम्हारे पास विश्वास है जो अंत में तुम अपने खुशी और प्रस्तुत आवाज़ें स्वर्ग गीत को उसके पवित्र नाम को चिल्ला कर प्रश्न करेंगे. और इसलिए तुम्हें गहरी सांस ली और एक बड़ा कदम आगे, और यहाँ तुम हो. तुम्हारे पास है, तुम में से हर एक पास अपने आश्चर्यजनक सफ़र को तय कर चुके हो वापस अपने स्वर्ग घर के लिए. तुम्हारा नक्शा. अब हम तुम धरती पर हो, यह होशियारी होगी कि अपने आप से पूछो कि किस तरह तुम्हारे सफ़र बीत रहा था. क्या तुम हो बन रहे हो जो तुम्हें बनने को चुना गया था? क्या तुम वो चुनाव कर रहे हो जो तुम्हें स्वर्ग पिता के पास वापस ले जा सकता है? उसने तुम्हें सिर्फ इस सफ़र में अकेले बिना मतलब के चलने के में ही भेजा है. तुम्हें प्यारे माता पिता और विश्वासी गिरजाघर के नेताओं को दिया है. नक्शा दिखलाता है कि कहाँ पर शांति और खुशी को पा सकते हैं, और तुम्हें वापस घर आने में मदद करेगा. अब तुम कहा कि नक्शे को पा सकते हैं पवित्र धर्मशास्त्रों में, भविष्यवक्तों और देवदूतों के शब्दों में, और पवित्र आत्मा के व्यक्तिगत प्रतिकारण द्वारा. यह नक्शा यीशु मसीह का सुसमाचार है. वो अच्छा सुसमाचार और मसीह के चेले के लिए खुशहाल रास्ता है. यह वादा और उदाहरण है हमारे लिए हमारे मददगार और शिक्षक से, जो रास्ता को जानता है क्योंकि वो ही रास्ता है. वास्तव में सिर्फ एक नक्शा को रखने से कुछ अच्छा नहीं होता जब तक कि तुम उसका अध्ययन ना करो, जब तक कि तुम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते. मैं तुम्हारे आमंत्रित करता हूँ कि परमेश्वर के शब्दों के इस्तेमाल करना और सीखने को ही मुख्य स्थान देना चाहिए. पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलो ताकि वो तुम्हें अपने पूरे जीवन के सफर में मार्गदर्शन दे. तुम्हारे नक्शेश्वर के पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रसारण और सिखलाने वाले संदेशन से भरे पड़े हैं. आज मैं तुम्हारे साथ उनमें से तीन सदस्यों को बताऊंगा जो तुम्हें सफलता से घर की सफर तक मदद करेगा. पहला संदेश, हमें डरना नहीं चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा. तुम इस सफ़र में अकेले नहीं हो. तुम्हारे स्वर्ग के पिता तुम्हें जानते हैं. उस समय में भी जब कोई तुम्हें नहीं सुनता, वो तुम्हें सुनता है. जब तुम सच्चाई में खुशी मानते हो वो तुम्हारे साथ खुशी होता है, जब तुम मुसीबत में होते हो वो तुम्हारे साथ दुखी होता है। स्वर्ग के पिता का दिलचस्पी तुम्हें धनी या सुंदर या स्वस्थ या होशियार होने पर निर्भर नहीं होता है। वो तुम्हें दुनिया की तरह नहीं देखता है, वो यह देखता है जो तुम सही में हो। वो तुम्हारे हृदय को देखता है, वो तुम्हारे प्यार करता है क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। प्यारे बहनों, उसे गंभीरता से ढूंढो और तुम उसे पाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। अभी एक शाम निकालो और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो। कुछ तुम्हारे नेताओं, मित्रों या परिवारों के सदस्य हो सकते हैं। दूसरों के तुम्हें कभी भी नहीं देखा होगा, फिर भी तुम अपने इर्द गिर्द जिन्हें देखते हो इस सभा में, ये दूसरे स्थान पर, आज या किसी भी दूसरे समय, मरणशील दुनिया से पूर्ण हिम्मती था। उसी तरह का विनम्रता और साधारण दिखाने वाले आदमी तुम्हारे पास बैठा हुए हो सकता है, जिसे तुम्हें आत्माओं को क्षेत्र में एक महान भाग के तौर पर यह प्यार किया और इज्जत दिया था। तुम अपने लिए खुद ही सही उदाहरण रहे होंगे। एक चीज जिसका तुम्हें यकीन है, सभी इंसान जैसे तुम्हें दिखते हो, चाहे किसी भी जाति, विश्वास, राजनीतिक विश्वास, शरीर का बनावट या कैसा दिखता हो परिवार है, वो जवान महिला जिसे तुम देखते हो उसके पास भी वही स्वर्ग का पिता है तुम्हारी तरह, और उसने भी तुम्हारी तरह उसका प्यार भरे संगीत को छोड़ा है, इस धरती पर आने के लिए और जीता है कि दिन तुम उसके पास वापस जाओगे। फिर भी वह शायद अकेली महसूस करे उसी तरह जिसे तुम कभी कभी करते हो। वह शायद अपने सफर के माथा को भी भूल जाए। कृपा उसे याद दिलाए अपने शब्दों और अपने कार्य से कि वो अकेली नहीं है। हम यहाँ एक दूसरे का मदद के लिए है। जीवन में मुश्किलें हो सकती है और वो हृदयों को उस हद तक कठोर बन सकते हैं। कुछ को गुस्सा आ सकता है, दूसरे मजाक उड़ा सकता है और सकते हैं उन पर जो प्यार परमेश्वर में विश्वास करते हैं। मगर ध्यान रहे, चाहे उन्हें याद ना हो, उन्होंने भी वापस स्वर्ग के पिता के पास जाने के लिए हमें हामी भरा था। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को बदलो। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। तुम्हारे कार्य है कि अपने सिद्धांतों को बांटो और डरो मत। सभी को दोस्त बनाओ, मगर अपने स्तर को कभी कम मत करो। अपने सिद्धांतों और विश्वास पर अटल रहो, सीधे खड़े हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो और वो तुम्हारे साथ खड़ा है। दूसरी संदेश, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या तुम नहीं कभी सोचा है कि किस भाषा में तुम बातें करते थे जब हम परमेश्वर के साथ थे? मुझे यह लगता है कि जर्मन में था, मगर मुझे पता है कि किसी को भी सही और से पता नहीं है। मगर मुझे पता है कि हमारे मनसील जीव में हमने सीधे हमारे आत्मा के पिता से एक सार्वजनिक भाषा, एक जिसके पास शक्ति है भौतिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से जलने के। यह भाषा यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली भाषा है। मसीह का प्यार बनावटी नहीं है। यह उस तरह का प्यार नहीं जो सिर्फ बड़ाई पत्र पर लिखी हो। यह उस तरह पर का प्यार नहीं जो जानमाने संगीत और विचारों में दिखलाया जाता है। यह प्यार चरित्र में सभी बदलाव लाती है। यह नफरत का बदलता और जलन कम करता है। यह क्रोध को ठीक करता है और एहसास को हटाता है। यह चमत्कार का सकता है। हमने अपने पहला पाठ इस प्यार के भाषा में परमेश्वर के सामने आत्मा की तरह पाया था, और यहाँ धरती पर हमारे पास अवसर है इस करने का और निपुण बनने का। जब तुम्हारे मुख्य सोच उस पर होगा कि किस तरह वो तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे, तुम्हारे प्रेरणा स्वार्थी और कम हो सकते हैं। यह वो भाषा नहीं है जो तुम सीखना चाहते हो। मगर जब तुम्हारे मुख्य सोच और कार्य परमेश्वर और दोस्तों की सेवा पर गौर करती है, जब तुम सच में अपने इर्द गिर्द के लोगों को आशीर्वाद देना और ऊपर उठाना चाहोगे, फिर मसीह का सच्चा प्रेम की शक्ति तुम्हारे हृदय और जीवन में कार्य कर सकती है। ये वो भाषा है जो तुम सीखना चाहते हो। जब तुम इस भाषा को सीख जाओ और दूसरों को वार्तालाप में इस्तेमाल करो, वे तुम में कुछ देखेंगे जो उनके सोए हुए एहास को जगा दे वापस स्वर्ग के पिता के घर में जाने के लिए शरीर रास्ते को ढूंढने हुए, क्योंकि प्यार की भाषा उनकी सही परदेशी भाषा भी है। यह गंभीर और अंत तक का प्रभाव एक भाषा है जो सही आत्मा तक पहुंच जाती है। एक समझने की भाषा, एक सेवा की भाषा, एक उपहार उठाने की खुशी और दया देने की भाषा है। मसीह के प्यार का सार्वजनिक भाषा को सीखो। और तीसरा संदेश, हमें प्रसन्न रहना चाहिए। क्या हम कभी कभी बसरबा नहीं हो जाते हैं कि हम अपने सफर में कहा जाता रही है? अगर हम 12 साल के हो तो हम आशा करते हैं कि हम 14 साल के होते, 14 के हमार में हम आशा करते हैं कि 18 साल के हो, और 18 के उम्र में शायद तुम ऐसा हो आशा करते हैं कि अब 12 फिर जो जाते और सभी कुछ दोबारा शुरू करते। तुम्हारे पास हमेशा चीज़ें हैं शिकायत के लिए, चीज़ें जो तुम चाहो कि तुम्हारी तरह हो। मगर यह वो सफ़र नहीं है जिसका तुम्हें इच्छा किया था, और यह वह सफ़र नहीं है जिसमें हम स्वर्ग पिता के भाग लेने भेजा था। याद रखो, तुम सही में स्वर्ग के पिता के पुत्री हो। यह जानते हुए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम सही और खुशहाली से चलो। हाँ, रास्ते में गड्ढे और बदलाव है और कुछ खतरे भी, मगर उस पर ध्यान मत दो। उस खुशहाली को देखो और स्वर्ग के पिता ने हमारे लिए तैयार किया है हमारे सही सफ़र के कदम पर। इस दुनिया में शांति और दुनिया में अंत जीवन आने को है, यही वह वादा करता है। यही है कि क्यों वह हमें आज्ञा देता है कि प्रसन्न रहो। जब हम अपने प्यार पिता के नक्शे को खुशी से इस्तेमाल करो जो उसने तुम्हारे सफ़र के लिए तैयार किया है, तुम अपने आनंद संभावना तक पहुँचेगे। प्यारे बहनों, गिरजाघर की प्यारी जवान महिलाओं, प्यारे जवान मित्रों, प्रभु की देवदूत की तरह मैं तुम्हारे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने इस सफ़र में वापस घर लौटने में रास्ता ढूंढ सकोगे, और तुम अपने साथ सफ़र करने वाले को प्रेरित करोगे। यह भी मेरा वादा और प्रार्थना है कि अगर तुम वादा को अच्छाई से आदर करोगे और जीवन बिताओगे, सिद्धांतों और यीशु मसीह के सुसमाचार के मूल को जानोगे, तुम्हारे सफ़र के अंत में स्वर्ग के पिता वहाँ हो गए। वो तुम्हें थामेगा और तुम एक बार फिर जानोगे कि तुम घर पर एक बार फिर सुरक्षित ढंग से पहुँचे गए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Our dear Heavenly Father,
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देते हैं. हम स्पीकर्स के लिए धन्यवाद देते हैं. हम यंग वुमेन्स प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं. हम आशा करते हैं कि आप हमें शक्ति दें जब हम घर जाएंगे. यीशु मसीह के नाम में आमीन.